نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير لا تحزن day 7 آج کی آیت نوٹ کیجئے گا کیونکہ قرآن پاک کی آیات میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں اپنی اصلاح کی اور اپنے عمل کی سورة آل عمران آیت 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں جو کہ غزوہ احد کے تناظر میں نازل ہوئی تھی ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ ایمان کو مکمل کرنا، ان کنتم مؤمنین۔ حقیقت یہ کہ ایمان انسان کو امن دیتا ہے، ایمان میں سلامتی ہے۔ اصل میں دنیا میں پیس قائم کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کا نقطہ اتمام ایمان کے تکمیل ہے۔ ہم سب ایمان کے مختلف سٹیجز پہ ہوتے ہیں۔ میں ایمان کو سمجھنے کو پھل کے پکنے سے سمجھی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں یہ دعوت دی ہے کہ پھل کو دیکھو جبکہ وہ پکتا ہے۔ تھوڑے سے چند مرحلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ جب بھی کوئی پھل پکتا ہے تو بور سے لے کر اس کے پھل بننے کے بیچ میں مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ہم مثال لیتے ہیں مینگو کی۔ کچھ لوگ آم سے بہت محبت کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں آم بہت مزے کا ہوتا ہے۔ جس نے کبھی آم چکھا نہیں، کھایا نہیں، دیکھا نہیں، وہ کہتے لاؤ میں بھی چکھوں۔ کوئی اس کے ہاتھ میں کچا آم دے دے، کیری دے دے، وہ اس کو چکھے اور ایک دم تھوک دے کہ یہ ہوتا ہے آم؟ وہ تو بڑے ذائقے بتا رہے تھے، بڑے میٹھے، یہ تو کھٹا ہے، یہ تو کڑوا ہے، میری تو زبان چھل گئی، کیا ہوا؟ کچا آم کسی کے ٹیسٹ کو خراب کر گیا۔ اس کا جواب کیا تھا؟ کہ آم تو برا نہیں تھا لیکن تم نے بے صبری کی۔ بالکل پھل جو بہت ہی میٹھا کیوں نہ ہو، بیج کے مرحلوں میں کبھی کھٹا ہوتا ہے، کبھی کڑوا ہوتا ہے۔ وہی آم اوور رائپ ہو جائے تو ٹو سویٹ ہوگا، کیلے کو اور پکنے دیجئے تو گل بھی جائے گا۔ اسی طرح سے یاد رکھیے، ہم تھوڑے سے ایمان پہ بہت راضی ہوتے ہیں لیکن جب اس ایمان کے تقاضے نبھانے میں اور ان کو پورا کرنے میں مشکلات آتی ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہائے بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں، کیا بتائیں۔ تو لکھیے گا کہ پھل کی طرح ایمان کے مٹ میں رہنا زندگی کو بعض دفعہ کڑوا، کیا کھٹا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے۔ کریے کیا؟ چلتے رہیے، چلتے رہیے۔ تھوڑے ایمان کو زیادہ ایمان میں، ادھورے ایمان کو پورے ایمان میں بدلیے، ایک دن آپ ضرور اس کا ذائقہ چکھیں گے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے من ذاق طعم الایمان، جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ چند کام ہیں جس کو اس وقت نہیں چھیڑوں گی تاکہ آپ کی توجہ اسی پہ رہے۔ تو ایمان کو مکمل کرتے جائیے۔ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جاتے ہیں، زندگی کے چھوٹے چھوٹے مصائب پہ پریشان ہیں، یہ اصل میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسے مالی بھی چیک کرتا ہے کہ پھل پکا کہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ دیکھو فرشتوں اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ تو آپ جمے رہیں گے تو پھر ایمان بھی پکے گا، اور اگر آپ ہٹ گئے، ہل گئے، اس جگہ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کی زندگی کھٹی میٹھی ہی رہے گی۔ ایک آنکھ سے روئیں گے تو ایک آنکھ سے ہنسیں گے۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس ٹپ سے اپنے لیے؟ کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ، کیونکہ تندی عبادے مخالف سے نہ گھبرا، کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو زندگی میں بہت سارے ٹیسٹ اور غم، پریشانیاں اور بیماریاں اور جدائیاں اور لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس اور اس طرح کی اور چیزیں آتی ہی اس لیے کہ ہمارے ایمان کے پھل کو پکا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے گزار کر ایسے پکے ہوئے اور مزیدار قسم کے فروٹس بنا دے کہ صرف ہم خود ہی نہیں، دوسرے بھی ہماری کمپنی میں انجوائے کرے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے غموں کو اور پریشانیوں کو بھولنا سیکھ لے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق پہ۔ جو ٹپس ہم نے پچھلے حصے میں کی ان کو نوٹ کر لیجئے تاکہ کل کا سبق آج سامنے ہو تو اگلا سیکھنے میں مدد ہوتی ہے۔ ہم نے جو ٹاپک کیے تھے اسے پچھلی نشست میں، یہ بھی سوچئے، جذبات پر قابو رکھیے، साहबे कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुशबख्ती, यानी सहाबा भी खुशकिस्मत और अल्लाह के नबी भी खुशकिस्मत। और जज्बात पर काबू यह है कि खुशी और गम को सहारना सीखिए, और ये भी सोचिए क्या कि अगर आपके पास जूते नहीं तो किसी और के पास तो पाँव भी नहीं है। इसी तरह हमने देखा था कि ज़िंदगी में उकताहट से बचिए, बोरिंग ना हो। जो लोग बोर होते हैं वो दूसरों को बोर करते भी हैं। फिर इसी तरह मुस्तरब होना छोड़ दें। हर वक़्त के दुख अच्छे नहीं होते, हर वक़्त का रोना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। गम ना करें कि हर चीज़ क़ज़ा व कदर से होती है। गम ना करो, तंगी दूर होने की उम्मीद रखो, और गम ना कीजिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए। और गम ना कीजिए, बस हमेशा अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। सोने के पानी से लिखने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये, क्योंकि आज लोग हज़ारों लाखों खर्च करके और साइकाट्रिस्टों और डॉक्टर्स और लॉयर्स को सब कुछ देकर और घंटों कॉमेडी ड्रामों को देखने की ख्वाहिश में स्क्रीनों को देखने वाले और सोशल मीडिया से चिपके रहने वाले सिर्फ़ फ़न के नाम पर और इन्जॉयमेंट के नाम पर भी वो खुशी ना पा सके जो अल्लाह ताला के इस कलाम से और हमें चंद बातों को सीखने से मिली। आज चलेंगे अगली टिप पे, और वो क्या है, गम ना करें और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। हमारे कल्चर में एक बड़ा मारूफ जुमला है कि मायूसी कुफर है। कुरान पाक की आयतों को पढ़ने के बाद लगता भी यही है। तो ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं, और वो दुख इस हद तक बढ़ते हैं कि मायूसी में बदल जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी आनी नहीं। और ख़ास तौर पे ये कब होता है, जब एक गम एक से ज़ायद बार आ जाए। मतलब घर नहीं बन सका, टूट गया, फिर दोबारा शादी हुई, फिर ना बना, कहता छोड़ो इनकी ज़िंदगी में खुशी होती तो मिल चुकी होती, बस आज के बाद कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह करो, और अब ये नहीं करना तो और क्या करना है, इस तरह की कैफियत है। हालांकि आप देखिए कि अल्लाह ताला तो दो या चार दफ़ा के बीमार को 5वीं दफ़ा के इलाज से सेहत दे दें, तो ज़िंदगी में से उम्मीद निकल जाए तो पीछे सिर्फ मैयत रह जाती है बंदे की, कि जिसके दोबारा जीने की कोई उम्मीद नहीं होती। मज़ीद बातें इसके ऊपर थोड़ी सी समझते हैं एक रिवायत की रोशनी में। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है कि बेहतरीन इबादत तंगी दूर होने की उम्मीद है। क्या सुबह जल्द ही आने वाली नहीं? और ये तंगी दूर हो जाती है जब, तो इंसान की ज़िंदगी में कितनी खूबसूरत बात आती है। पिछले सबक में हमने जब ये चीज़ पढ़ी तो हमें इस बात का पूरी तरह से यकीन आ गया था कि ज़िंदगी में से जब हम उम्मीदों को ख़त्म करते हैं और इस्तग़फ़ार को डालते हैं और फिर अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़ुबान पे आ जाता है, तो फिर हकीकत में रहमतें ही रहमतें हैं। और गम न करें क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूसी सिर्फ़ गैर मुस्लिम या गैर मोमिन के नसीब में है। अल्लाह की रहमत से काफिर ही मायूस होते हैं, हत्ता के रसूल भी मायूस होने लगे और उन्होंने समझा कि इन्हें छुटलाया गया। ऐसे आलम में हमारी मदद आ गई, हमने इनको रंजो फिक्र से निजात दी। हम इसी तरह मोमिनीन को बचाते हैं। मुसलमानों के बारे में फरमाया, तुम अल्लाह पर गुमान करने लगे। इस वक्त मोमिन हिला मारे गए और शदीद जलजले का सामना इनको हुआ। तो कुरान के और सीरत के वाक़यात और आयात को पढ़ने के बाद ये बात पता चल जाती है कि एक मोमिन कभी भी बदगुमान नहीं होता। देखिएगा सूरत यूसुफ 87, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस तो काफिर कौम ही होती है। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों का अल्लाह पर गुमान हमेशा अच्छा होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से रंजो फिक्र से निजात मिलती है, और रसूलों को मायूसी के बाद अल्लाह की मदद पहुंची। लेकिन नोट कीजिएगा कि रसूलों की ये मायूसी वो मायूसी नहीं है कि जिनको काम से रोक दे और वो डिप्रेशन के मरीज़ बनकर घरों में बैठ जाएं, आखिरी वक्त तक कोशिशें करते रहे और बिल आखिर फिर अल्लाह ताला की मदद उन तक पहुंच गई। इस पे हदीस नोट कीजिएगा, इब्ने माजा की है 181। अबू रज़ीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अपने बंदों के मायूस होने से हंसता है जबकि अल्लाह ताला की तरफ से इनकी हालत बदलने का वक्त करीब होता है। वो कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल के रब हंसता है? यानी आप देखिए कि उनको इस एक्सप्रेशन पे भी हैरत हुई थी। तो आपने फरमाया, हाँ। तो मैंने अर्ज़ किया, तब तो हम ऐसे रब की खैर से हरगिज़ मायूस ना रहेंगे जो हंसता हो। क्या मतलब, जैसे बच्चे माँ को स्माइल करता देख लेना तो फिर फरमाइश भी कर देते हैं, कहते नहीं आज मामा का मूड बड़ा अच्छा है। और जो एग्ज़ामिनर या जो टीचर वाकई स्माइल दे दे तो उम्मीद लग जाती है कि आज वक्त से पहले छुट्टी हो जाएगी। कहाँ वो रब्बे कायनात, जब वो हंसे तो आप और मैं रोते रहें। क्यों भाई, हंसिए, मुस्कुराइए, स्माइल दीजिए। तो क्या सीखा इससे कि मुश्किल हालात में अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी है, जिक्र और इस्तगफार की कसरत करनी है और फारिग नहीं रहना, वरना ज़िंदगी उकसाहट और इज़तराब से भर जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी को बोरिंग कर लीजिए, बोझल हो जाएगी। ज़िंदगी को हल्की फुल्की रख कर गुजार दीजिए तो ये एक तोहफा बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग खुद साख्ता मुश्किल का शिकार होते हैं, सारी ज़िंदगी मुजरिम किसी और को गर्दानते हैं, लेकिन एंड पे कटहरे में खुद को खड़ा हुआ पाएंगे। अल्लाह ना करे आप में से मेरे में से किसी के साथ ऐसा हो। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। दूसरों की अज़ियत से मत घबराइए। क्यों? इसलिए कि हम दूसरों की अज़ियतों से घबरा कर उस तकलीफ़ को बढ़ा लेते हैं। करें फिर क्या, घबराना नहीं तो क्या करें? तो लिखिए कि जो आप पर ज्यादती करे उसे माफ़ कर दीजिए। इंतकाम का मिजाज रखने वाला, इनसे हसद करने वाला, अपने इंतकाम की ज़बरदस्त कीमत, अपने गोश्त, खून, अपने आसाब, राहत व सुरूर, सब चीज़ें खो कर अदा करता है। जी, आप जब जलते कुड़ते हैं और ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स आप में आती है ना, तो मुखालिफ को पता भी नहीं होता, लेकिन शुगर आपको हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। गोया के किसी जगह मैंने एक जुमला बोला था गुस्से के बारे में। हमारी एक वर्कशॉप थी एंगर मैनेजमेंट, तो उसमें गुस्से की एक बड़ी ठेठ सी तारीफ लिखी थी लोगों ने सुनकर। और वो क्या थी कि गुस्सा क्या है, दूसरे की गलती की सज़ा खुद को देना। तो हकीकत है, आप ये सारे लफ्ज़ बाद में दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। जो लोग इंतकाम की आग में जलते हैं ना, वो बिल आखिर या तो बिस्तर पे लग जाते हैं या इंतहाई कड़वे कुसैले हो जाते हैं, करेले से भी ज़्यादा कड़वे। फिर तो लोग उनके पास बैठने से भी डरते हैं कि चुप करो या कुछ कड़वी बात ना सुना दें। जो शख्स लोगों पर गुस्सा करता है, इनसे हसद करता है, वो बिलाशुबा नुकसान उठाता है। अल्लाह ताला ने इस बीमारी का इलाज और दवा ये बताई कि गुस्सा पी जाएं और दरगुजर से काम लें। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। दरगुजर करो, मारूफ का हुक्म दो और जाहिलों से एराज़ करो। और फरमाया एक और जगह कि अहसन तरीके से बुराई का जवाब दो, ऐसा करोगे तो जल्द ही तुम्हारे और दुश्मन के बीच पक्की दोस्ती हो जाएगी। जी, सूरत आल इमरान की आयात है। तो क्या सीखा आपने मैंने इस पे कि नाखुश नहीं होना। जो शख्स नाखुश होता है ना, उसकी चंद आदात देख ली। मसलन आप देखिए कि खुद को अजियत देता है या किसी ने इसको अजियत दी, ताना दिया, गुस्सा किया, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा की और जिस्मानी तौर पे खुद को तकलीफ दी। यानी ऐसा बंदा वाकई खुद भी जलता है और दूसरों को जलाता है, फिर उसका मिजाज इंतकाम वाला बनता है। और ऐसा शख्स अमूमन हसद करता है, बेजा गुस्सा करता है, दूसरों को अजियतें देता है। आप ज़रा सा इन आदात को अपने आईने में रख कर देखिए, क्या मैं ताने तो नहीं देती, गुस्सा तो नहीं करती, मैं दूसरों के लिए मुश्किलात तो नहीं खड़ी करती? यानी दूसरों को तकलीफ में देखकर या दूसरों को चारों को उलझते तरफते देखकर मैं खुश तो नहीं होती कि चलो अच्छा है ना, वो करके दिखाएं और ज़रा देखें। देखिए, माँ तो कभी नहीं चाहती अपने बच्चे के लिए कि ये गिरे पड़े और माँ को लोग अवार्ड दें कि देखा तुम्हारी मौजूदगी में भी ये गिर गया और ये हो गया वो हो गया। फिर इसी तरह खुद से ये सवाल किया करे, मैं हसद तो नहीं करती, मेरे दिल में दूसरों से बदला लेने का मिजाज तो नहीं है। तो इंशाल्लाह जितना ज़्यादा आप किरदार के आला दर्जों पे फायज़ होते जाएंगे, ये नेगेटिविटी निकलेगी। और अल्लाह ने तो ये हुक्म दे ही दिया, वल काज़िमीन अल गैस। आप देखिए कि इसमें काज़िमीन का है, ये नहीं कहा कि इनको गुस्सा आता नहीं है, मोमिनों को आता है, लेकिन वो इसको पी जाते हैं। क्योंकि जब तक गुस्सा पियेंगे नहीं, उनके अंदर तल्खी को बर्दाश्त करने की आदत डेवलप नहीं होगी। तो क्या करना है, हमने इर्द गिर्द जो भी शख्स आपको सताए, खपाए, तंग करे, आपने उस पे आए हुए गुस्से को एनर्जी बनाना है। अल्लाह के पसंदीदा लोग कौन होते हैं कि जो हसद ना करें, जो लोगों की गलतियों पर इनसे दरगुजर करें और अच्छी बात का हुक्म दें? क्या आप में अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होना चाहते हैं? तो फिर सूरत आले इमरान आयत 134 और सूरत फुसिलत आयत 34 को हिर्ज़े जान बना लीजिए कि सख्ती और तकलीफ़ के मौके पर अल्लाह की राह में खर्च भी करना है, गुस्सा भी पीना है, लोगों से दरगुजर भी करना है, और फिर आप इस टाइटल को पा लेंगे कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और एक और टिप ले लीजिए कि बुराई को भलाई से रोक लें। गंदगी को साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे तो साफ़ होगी, गंदगी को गंदे कपड़े से साफ़ करेंगे तो और भी फैलेगी। तो दुश्मनों को दोस्त बनाने का नुस्खा है ये। अमल की बातें मेरे आपके लिए क्या है? बिलफर्ज आपके इर्द गिर्द में से कोई आप पे ज्यादती करता है, बर्दाश्त कीजिए, खुश हुआ करें, ये लोग आपकी जन्नत हैं। दुआएं दिया करें ताने देने वालों को, शुक्रिया के ख़त भेजें, कोई फूल भेजें, कोई फ्रूट भेज दीजिए उस बंदे को जिसने आपकी खिबत की। जैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह के बारे में मारूफ है कि उनको पता चला कि उनका हमसाया उनकी बुराई कर रहा है, तो बड़ी खूबसूरत फलों की बास्केट बना कर उनके घर भेजी। उन्होंने पूछा खैरियत है? कहा कि जो आपने मुझे दिए वो तो मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन मेरे पास जो मौजूद था वो हाज़िर है। क्यों भाई क्या? कहा मुझे पता चला आपने मुझे अपनी नेकियाँ दे दी हैं, तो फिर मैं तो आपको उसके जवाब में फल ही दूंगा। बताइए ऐसे बंदे की कोई बुराई कर सकता है? फिर इसी तरह ज्यादती करने वाले को माफ़ कर दीजिए, बुराई का जवाब भलाई से दें, इसलिए कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नोट कीजिए इस टिप के साथ, माज़ बिन जबल से रिवायत है और तिरमिज़ी 3452। कहते हैं कि दो आदमियों ने अल्लाह के नबी के सामने आपस में गाली गलौज की, यानी मूड ख़राब हो गए। इनमें से एक के चेहरे से गुस्सा यहाँ हो रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर वो इस कलमे को कह ले तो इसका गुस्सा दूर हो जाएगा। और वो कलमा ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान रजीम से, यानी शैतान इस वक्त जो काम गुस्से में डाल के करना चाहता था, मैं गुस्सा ना करके अपने आप को उस काम से बचा लूँगा। तो अल्लाह ताला आपको मुझे भी इतना ही ज़र्फ़ अता करें। बाद चीज़ों की इलाज बड़े आसान होते हैं, हम खामखा बड़े बड़े डॉक्टरों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ऐसा ही एक और इलाज लीजिए गुस्से को दूर करने का, गम को, दुख को, तकलीफ़ को दूर करने का। और वो क्या है कि जो खो गया इस पर अफसोस ना करें। जी, कुरान पढ़ते हैं तो सूरह हदीद में जाकर ये बात समझ आती है, आप यहीं ले लीजिए, क्योंकि आपके पास नेमतें बहुत सी हैं। अल्लाह के इन ज़बरदस्त अतियों और जलीलुल कदर नेमतों के बारे में सोचिए और इन पर इसका शुक्र अदा कीजिए। ज़रा सा बैठ कर कागज़ कलम लेकर लिखिए तो सही, अल्लाह ने आपको क्या क्या दिया। और मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊँ, जो नहीं दिया हुआ ना वो लिख लें, बाकी सब दिया ही दिया। वो कहते हैं ना, तू अता मैं खता। अल्लाह के दिए हुए की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो खुद फरमाता है सूरत इब्राहिम में, वाइन तउद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। और फरमाया, इसने तुम्हें हर तरह की ज़ाहरी और बातनी नेमतें अता की, और जो भी नेमत तुम्हें मिली है अल्लाह की तरफ से मिली है। और एक जगह अल्लाह अपने बंदे पर नेमत की याद दहानी कराते हुए कहते हैं, अलम न चल्लहु ऐनैन वलिसानं वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन, क्या हमने इसे दो आंखें, एक जुबान, दो होंठ नहीं दिए और इसे दो रास्ते बता दिए? अगर मैं आपको आयतों के नंबर ना भी बताऊं ताकि बात बोझल ना हो, तो अपने लिए नोट किया करें कि मैंने कुरान पाक से ढूंढ के इनके नंबर और रेफरेंस लिखने हैं, क्योंकि हमारे लिए कुरान में इतना ख़जाना है खुश रहने का। और नेमतों पर गौर व फिक्र करना तो इंसान की ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। तो क्या आप और मैं अपनी आँखों और अपनी ज़ुबान और अपने होंठों को नेमत समझते हैं? फिर पे दर पे नेमतें दी, ज़िंदगी की नेमत, आफियत, समाओ, बसर, दो हाथ, दो पाँव, पानी, हवा, ग़ज़ा, बताइए इसमें से कौन सी नेमत छोटी है? और इन सब में सबसे बड़ी नेमत, नेमत हिदायत, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो हिदायत रब्बानी यानी इस्लाम है, रदीत लकुम अलिस्लाम दीना। एक आदमी ने कहा, क्या तुम अपनी आंखों के बदले $1 बिलियन लोगे? क्या $1 बिलियन में अपने कान दे सकते हैं? क्या अपने पैर $1 बिलियन के इवज दोगे? क्या अपने हाथ के बदले $1 बिलियन लोगे? क्या अपना दिल $1 बिलियन लेकर दोगे? तो फिर क्यों कहते हो मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास तो इतना मालो दौलत है, फिर भी शुक्र अदा नहीं करते? तो कमी जिस चीज़ में है ना मेरी आपकी ज़िंदगी में, वो है शुक्र में। शुक्र के ग्लासेस लगा लीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको क्या देता है। तो इसको दिल से बांध लीजिए कि जो खो गया उस पर अफसोस नहीं करना, जो है वही बहुत। वो कहते हैं ना, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो मिला है वो भी किसी से कम नहीं। तो ज़िंदगी का असूल बनाइए, अमूमन ज़िंदगी में अफसोस की वजूहात क्या होती हैं? हम किस किस चीज़ पे अफसोस करते हैं? जानी नुकसान हो जाए तो, माल की कमी हो उस पे, इसी तरह जिस्मानी नकायस हैं, कोई हैंडीकैप हो गया, किसी को किसी किस्म का जिस्मानी ऐप दिया गया, इसी तरह बाज़ दफ़ा औलाद के दुख आते हैं। कभी-कभी तो लोग तालीम में पीछे रहने पे भी अफसोस करने लगते हैं। जब कभी इनमें से किसी एक में आप मुबतला हो तो उस वक्त अल्लाह की नेमतों को याद कीजिए। चार हिस्सों में बांट लेते हैं हम अपनी नेमतों को, जिस्मानी नेमतें, ज़ाहरी नेमतें, बातनी नेमतें, कायनात की नेमतें। और जब इन चार किस्म की नेमतों में से अक्सर चीज़ों को अपने पास पाएं तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रगुजारी के जज्बात से तो कुरान शुरू होता है। तो अल्लाह तआला की बेबहा नेमतें और उनमें से हिदायत रब्बानी, हिदायत की सूरत में आपको मुझे मिली, इस पे शुक्रगुजारी कीजिए। फिर जहनी सलाहियतें, स्किल्स, एक छोटा सा बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है, ना भी ज़ुबान अरबी की हो लेकिन अरबी याद हो जाती, उसके लफ्ज़ इंग्लिश उर्दू क्या कुछ नहीं बोलते। आप कंप्यूटर चला लेते हैं आज जो पहले नहीं चलाते थे। इसी तरह आप देखिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर पाँव से लेकर सर तक देखिए तो आपके जिस्मानी अज़ा क्या नेमत नेमत नहीं है, तो फिर किस बात का गम है। अल्लाह तो खुद चैलेंज करते हैं, सूरत नहल 18 में भी ये आयत है, इब्राहिम में भी आती है, कि तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहो नहीं कर सकते। तो अल्लाह के ये सवालों के जवाब लिखिएगा बाद में, क्या हमने आपको दो आंखें नहीं दी? अब इन आंखों से हम क्या देखते हैं? ये हमारे नसीब की बातें हैं। ये जुबान और ये दो होंठ क्या तस्करे हैं इनके ऊपर? और हमने इसे दो वाजे रास्ते दिखा दिए, यानी खैर का रास्ता और शर का रास्ता। सूरह बलद की आयत 8 से 10 में आपको मुझे अल्लाह ने दिन में कई बार इन चीज़ों पर गौर करने की दावत दे दी है कि जिसको आईने में हर वक्त ही देख रहे होते हैं। क्या हम अपनी आंखें, कान, नाक और पैर पैसों की खातर बेच सकते हैं? सुना होगा आपने, गुर्दा बेच दिया बहन की शादी करने के लिए। ये तो कोई एक दो केस होगा ना, बेचारा पता नहीं कितना को मजबूर होगा। और गुर्दा बेचा, दिल नहीं बेचा, क्योंकि एक गुर्दे से जी सकते हैं, एक दिल जला गया तो फिर नहीं जी सकते। तो जब अल्लाह तआला की नेमतें इतनी कीमती हैं तो हम में से कौन गरीब होगा? क्या जहनी सलाहियतें खरीदी जा सकती हैं? फिर तो सारे ही माँ बाप अपने घर बंगले बेचकर बच्चे खरीद लें, हाई स्किल्ड, हाई IQ लेवल के, और जीनियस बच्चे खरीद लें। क्या आप रिश्ते खरीद या बेच सकते हैं? माँ नहीं है, खरीद सकते हैं? बच्चा नहीं हो रहा, जाके बाजार से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। इसी तरह आप देखिए, इस टिप पे एक हदीस नोट कीजिए। अबू दाऊद की रिवायत है 4813, जाबिर बिन अब्दुल्ला रावी हैं। जिसको कोई चीज़ दी जाए फिर वो भी देने के लिए कुछ पा जाए तो चाहिए कि इसका बदला दे, और अगर बदले के लिए कुछ ना पाए तो इसकी तारीफ़ करे, इसलिए कि जिसने इसकी तारीफ़ की तो गोया इसने इसका शुक्र अदा कर दिया, और जिसने छुपाया यानी एहसान को तो उसने नाशुक्री की। तो क्या सीखा आपने? मैंने अमल की बातें, हमें अपनी नेमतों के बारे में सोचना है, इनकी कदर करनी है, अल्लाह का शुक्र बजा लाना है, क्योंकि नेमतें शुक्र करने से बढ़ती हैं और नाशुक्री से नेमतें कम होती हैं। और सबसे बढ़कर एक नेमत जिसको हम नेमत भी नहीं समझते इसलिए कि बिन मांगे मिली, वो है प्यार करने वाले। तो अपने प्यारों की कदर कीजिए और इनके साथ को नेमत समझिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो सारा दिन आपको सताते हैं, एक घंटा कहीं चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि ये प्यारे बच्चे क्या हैं आपकी ज़िंदगी में। और शौहर घर ना हो तो जो इंतज़ार लगता है उसको देखिए। और इसी तरह एक रात बीवी कहीं मायके चली जाए तो फिर उसके बाद घर कैसे चलता है। तो प्यारों की कदर कीजिए, इससे अल्लाह ताला आपकी कदर करता है।